जब मैं फेल हूँ। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। मैंने लंबे और घटनाओं से भरपूर जीवन की अब तक की रोचक यात्रा में कामयाबी की ऊंचाइयों को छुआ है। मैंने राष्ट्र के विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। मैंने देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होने का सौभाग्य भी पाया है। अगर मैं पीछे की ओर देखूं तो मुझे यह दिखाई देता है कि मैंने जिंदगी में अनेक उपलब्धियां मिली हैं। कुछ मेरे प्रयास और कुछ मेरे टीम के प्रयास से फलीभूत हुई। यह मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे कार्य क्षेत्र में अत्यंत प्रतिभाशाली साथियों का सहयोग मिला। फिर भी मेरा मानना यह है कि जब तक एक व्यक्ति नाकामी की कड़वी गोली नहीं चखता, तब तक वह सफलता के लिए यथेष्ट रूप से प्रोत्साहित या प्रेरित नहीं हो सकता। मैंने सिक्के के दोनों पहलू देखे हैं। नाकामी के साथ साथ निराशा के गर्त में जाने पर मैंने जीवन के सबसे कठोर पाठ सीखा है। यह पाठ जिंदगी की हर मोड़ पर मुझे याद आती है, क्योंकि इनसे मुझे कठिन परिस्थितियों में अपने ढंग से कार्य करने में मदद मिलती है। मेरे जीवन के प्रारंभ में ऐसी ही एक घटना घटित हुई थी। उस समय मैं MIT यानी मद्रास प्रौद्योगिकी संस्थान में वैमानिकी या एरोनॉटिक का छात्र था। मेरे डिजाइन अध्यक्ष प्रोफेसर श्रीनिवासन थे, वे इस संस्थान के अध्यक्ष भी थे। एक बार 4 छात्र की हमारी टीम बनाई गई। हमारी टीम को काम था कि कम ऊंचाई पर उड़ने वाला एक लड़ाकू विमान का डिजाइन तैयार करना है। मैं उस टीम का इंचार्ज था। हमने कई हफ्ते कड़ी मेहनत की। मेरी टीम के साथी सभी घटक का पुर्जे तैयार कर रहे थे, जैसे प्रणोदन, ढांचा, नियंत्रण और यंत्र विन्यास। जब हमारे पाठ्यक्रम का अन्य कार्य संपन्न हो जाता, तब हम अपने विचारों के अनुसंधान पर घंटों चर्चे करते। हम सभी अपने इस परियोजक में अपने प्रोफेसरों को प्रभावित करना चाहते थे। वे लोग हमारे कार्य की प्रगति पर नजर रखे हुए थे। प्रोफेसर श्रीनिवासन ने मेरे द्वारा तैयार डिजाइन दिखाने को कहा। जब मैंने उन्हें वह दिखाया, उन्होंने समीक्षात्मक ढंग से उसकी जाँच की। मैं पास में खड़ा था और सांस थमे उनका फैसला सुनने को इंतजार कर रहा था। मुझे अभी तक याद है कि वह कैसे मेरे सामने फैले कागज पर बाहें सिकोड़ कर डिजाइन देख रहे थे। तभी वे सीधे खड़े हुए और उनके शब्द सुनकर मैं स्तंभ रह गया। यह इतना अच्छा डिजाइन नहीं है कला, उन्होंने कहा। उन्होंने मुझे खड़ी निगाहों में देखा और उन्होंने यह बात करी, मुझे तुमसे ज्यादा उम्मीद थी। यह कार्य निराशात्मक है, मुझे बहुत निराशा हुई। तुम्हारे जैसा होनहार छात्र और ऐसा काम? मैं हक्का बक्का होकर प्रोफेसर की ओर देख रहा था। मैं हर क्लास में होशियार छात्र था और किसी की कार्य में मुझे कभी भी टीचर की डांट नहीं सुननी पड़ी। मुझे उनके सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ी। यह मेरे लिए एक नया अनुभव था। मुझे यह बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। प्रोफेसर ने फिर सिर हिलाया और बोला कि मुझे दोबारा यह पूरा डिजाइन तैयार करना होगा। मैं शर्मिंदा था और उनकी सब बात को मंजूर कर लिया। तब उन्होंने और अधिक कटु शब्द कहे। मुझे यह काम दोबारा ही नहीं बल्कि मात्र 3 दिनों में इसे ही काम पूरा करके देना था। आज शुक्रवार की दोपहर है और मैं सोमवार की शाम तक पूरा विन्यास का आरोह यानी ड्राइंग देखना चाहता हूँ। यदि ऐसा नहीं कर पाया तो तुम्हारी स्कॉलरशिप बंद कर दी जाएगी। मैं अब और भी ज्यादा परेशान हो गया। मैं स्कॉलरशिप के भरोसे में कॉलेज में पढ़ रहा था। उसके बिना मुझे अपनी पढ़ाई बीच में ही रोकनी पड़ सकती थी। मेरी महत्वाकांक्षा, मेरे माँ बाप के सपने, मेरे बहन और जलालुद्दीन की आकांक्षाएं मेरे आंखों के सामने चलचित्र की तरह घूम गई। मैं सोच भी नहीं सकता था कि प्रोफेसर द्वारा बोले गए कुछ लफ्ज से मुझे अपना भविष्य अधिकात्मक दिखाई देने लगेगा। खुद को साबित करने के लिए मैं दृढ़ निश्चय के साथ तुरंत खड़ा हो गया। मुझे खाने पीने की सुध नहीं रही। पूरी रात में ड्राइंग बोर्ड पर ही काम करता रहा।
इससे पहले मेरे डिजाइन के पूरे पूर्ज के मस्तिष्क में तैर रहे थे, लेकिन अब अचानक वह इकट्ठे होकर सामने आने लगे और ऐसे ही आकृति एवं रूप में स्पष्ट दिखाई देने लगे जिन पर मैं काम कर सकता था। अपने काम पर एकाग्रत होकर मैंने अपने दिमाग को बुने जाने साफ करने लगा। अगली सुबह मैं साधिकार काम कर रहा था। थोड़ी देर के लिए मैंने काम रोका और कुछ चाय पिया तथा फ्रेश हो गया। उसके बाद फिर काम करने लगा। रविवार की शाम तक मेरा काम लगभग पूरा हो चुका था। एक साफ सुथरा डिजाइन जिस पर मुझे गर्व था। अब मैं डिजाइन को अत्यंत रूप से देख रहा था। मुझे लगा कि कमरे के अंदर कोई और भी मौजूद है। वे मेरे प्रोफेसर थे। उन्होंने सफेद रंग की टेनिस ड्रेस पहन रखी थी और क्लब से खोलकर लौट रहे थे। मैं नहीं जानता कि वे कब खेल कर आए और वहां खड़े होकर मुझे देख रहे थे। जैसे ही हमारी नजरें मिली वो आगे आ गए। वे कुछ मिनट तक बारीकी से डिजाइन का मुआयना करते रहे, फिर सीधे हो गए और मुस्कुराए। मैं हैरान था। उन्होंने मुझे प्यार से गले लगाया, फिर मेरी पीठ थपथपाई और कहा, मैं जानता था कि मैं उस वक्त तुम पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रहा हूँ जब मैंने तुम्हारे कार्य अस्वीकार कर दिया था। मैंने नामुमकिन समय सीमा तय कर दी थी, फिर भी तुमने निधात्मक समय सीमा के भीतर अपना काम पूरा किया। यह काम असाधारण कोटि का है। तुम्हारा अध्यापक होने के नाते मैंने तुम्हें तुम्हारी सीमा से आगे धकेला ताकि तुम अपनी सच्ची ताकत एवं संभावना से पहचान सको। एक ही झटके में डिजाइन अस्वीकार करने को 2-3 बाद में यह शब्द मेरे कानों में संगीत की सुरों से समान झंझट हुई। उसने मेरा आत्मविश्वास काफी बढ़ा दिया। उस दिन मैंने 2 बातें सीखी। पहली, जो शिक्षक अपने विद्यार्थी की प्रकृति का ध्यान रखता है वही हमारा सर्वश्रेष्ठ सच्चा मित्र होता है, क्योंकि शिक्षक जानता है कि आपको आगे बढ़ने के लिए कैसे प्रेरित किया जा सकता है। दूसरी, इस दुनिया में कहीं भी बाधा नामुमकिन सीमा समय ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अनेक कठोर जिम्मेदारियों को वहन किया है, उन्हें निभाया भी है, जिनमें से कुछ कार्य को देश के शीर्ष नेता भी देख सके थे। लेकिन MIT ने मेरी क्षमताओं के बारे में मुझे आश्वस्त किया था। इसके लिए मैं प्रोफेसर श्रीनिवासन का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मेरे जीवन में आगे चलकर काफी मदद की। MIT के बाद मेरे कामकाजी जीवन शुरू हो गया। मैंने बहुत थोड़ा ही किया, परंतु मैं जानता था कि मुझे अभी और कठिन पाठ सीखना है। मैं बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या HIL में काम करने लगा। वहीं मैंने विमान तथा उसके डिजाइन और प्रौद्योगिकी के बारे में बहुत कुछ सीखा। अब तक मुझे यकीन हो गया था कि मुझे पायलट के क्षेत्र में कुछ सीखना है और यही क्षेत्र को करियर बार बनाना है। जब मैं HAL के एरोनॉटिकल संस्थान इंजीनियर बना, मुझे नौकरी का अवसर मिला। एक अवसर वायुसेना के तथा दूसरी तकनीकी विकास एवं उत्पादन निदेशालय रक्षा मंडल में से मिला। मुझे दोनों जगह इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। पहला इंटरव्यू देहरादून तथा दूसरी दिल्ली में थी। मैं दिल्ली चला गया। मैंने अपने मन में तमाम आशाएं लगाए रखी थी दोनों जगह जाते वक्त। पहली बार मैंने MIT के निकट से विमान देखा था। यहाँ विद्यार्थी को विभिन्न सबसिस्टम दिखाने के लिए 2 विमान रखे थे। उनके प्रति मेरे मन में विशेष आकर्षण था। वे मुझे बार बार अपनी ओर खींच रहे थे। मुझे भी सीमाओं से परे मनुष्य की सोचने की शक्ति की जानकारी देते थे तथा मेरे सपने को पंख लगा देते थे। मैंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग को अपना अध्यक्ष क्षेत्र चुना क्योंकि उड़ान भरते भरते के प्रति मैं आकर्षित था। वर्षों से उड़ान की अभिलाषा मेरे मन में पहली थी। मेरा सबसे प्यारा सपना यही था कि सुंदर सुदूर आकाश में ऊंची और ऊंची उड़ान भरती मशीन हो हैंडल किया जाए और उस मशीन को हैंडल करते वक्त मेरे मन में उठने वाले गर्व के बारे में भी। जब मैं इंटरव्यू देने के लिए मद्रास से उत्तर भारत की ओर जा रहा था तब मैंने मन ही मन यह सपना बार बार देखा। अंतत में पायलट बनने के दहलीज पर खड़ा था। तमिलनाडु में देहरादून की यात्रा काफ़ी लंबी थी। भौगोलिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि मेरे जन्म स्थल से लेकर हिमालय की पहाड़ी में विशेष क्षेत्र तक की दूरी तय करने की यात्रा थी। मेरी मंजिल थी पायलट के रूप में वायुसेना में जाना। सबसे पहले मैं DDT ANTP में साक्षात्कार के लिए दिल्ली में रुका। मैं आत्मविश्वास से भरा था और इंटरव्यू भी आसान रहा। मुझे अपने ज्ञान की सीमा और जोर लगाकर बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने दिल्ली में एक सप्ताह बिताया। आगे मुझे वायुसेना चयन बोर्ड ने साक्षात्मक रूप से साक्षात्कार के लिए देहरादून जाना था। यहाँ मुझे उल्लेख करना चाहिए कि उस समय अपनी उम्र से 20वीं दशक से आश्रम थे। युवक होने के नाते अभी मैंने यह समझना शुरू ही किया था कि मुझे उस दुनिया में कैसे व्यवहार करना है। जब मैं पहली बार रामेश्वरम के बड़े बड़े रामेश्वरम से बड़े बड़े शहरों में अध्यक्ष के लिए निकला और अध्ययन कर रहा था तब मैं एक संकोची में मितभाषी लड़का था। मैंने अपने व्यक्तित्व को दृढ़ता लाने के लिए कड़ी मेहनत की। अलग अलग पृष्ठभूमि के लोगों से बातचीत करके खुद को बदलाव लाया। यह इतना भी आसान नहीं था। ऐसे में निराशाजनक और शुद्ध करने वाले पल भी आए। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और नौकरी की तलाश शुरू कर दी। मेरे व्यक्तित्व में भी काफ़ी निखार आ गया था। मैं अपने विचार अंग्रेजी और तमिल में बलिभांति व्यक्त कर सकता था। वायुसेना चयन बोर्ड के साक्षात्कार से लौटने के बाद मैंने उन सवालों को जवाब ढूंढने शुरू कर दिया जो मेरे सामने रखे गए थे। मैंने महसूस किया कि इंजीनियरिंग के ज्ञान के अलावा उम्मीदवार में योग्यता एवं हाजिर जवाबी की क्षमता तथा प्रत्युन्नति के गुण भी देखे गए थे।